नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद मुदिता, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
तो प्रेम, आज हम बात करेंगे बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन चल रहा है, इसके अलावा शतरंज में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हमारे बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आईपीएल के खत्म होने के बाद एक जो श्रोताओं को खालीपन लग रहा है वो शायद अगले कुछ दिनों में भरने वाला है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा उसके बाद से।
बिल्कुल, बहुत जल्दी बैक टू बैक बहुत सारी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स जो है हमको देखने को मिलेगी और ओलंपिक्स भी जो है,
बिल्कुल उसके बाद ओलंपिक्स में आ जाएगा। बिल्कुल, तो आगे बढ़ने से पहले हम नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सिंगापुर ओपन के पहले दौर में जीत हासिल कर दूसरे दौर में पहुंचे। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में आर वैशाली हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर महिला वर्ग में शीर्ष पर पहुंची। भारत में इस साल होने वाले विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की और दूसरे मुक्केबाजी विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की अंकुशिता बोरो ने क्वार्टर फाइनल में और अरुंधति चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैडमिंटन की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय पहले दौर में जीत हासिल कर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने डेनमार्क की लिने होजमार्क जॉर्सफेल्ट को 21-12 22-20 से हराया। वहीं एचएस प्रणॉय ने बेल्जियम के जूलियन कैरागी के खिलाफ 21-9 18-21 21-9 से जीत हासिल की। लेकिन प्रेम, जो खबर लक्ष्य सेन की है वो शायद कहीं ना कहीं हम लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका सामना पहले नंबर के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से था, तो वो 21-13 16-21 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इससे पहले किदम्बी श्रीकांत को पांचवीं वरीयता प्राप्त जापान के कोडाई नारोका के खिलाफ 14-21 3-11 से पिछड़ने के बाद रिटायर होना पड़ा। आइए सुनते हैं मुकेश की ये रिपोर्ट।
भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने उम्मीद के मुताबिक सिंगापुर ओपन की शुरुआत जीत के साथ की। सिंधु ने दुनिया की 21वें नंबर की खिलाड़ी के साथ 44 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12 22-20 से जीत हासिल की। दूसरे दौर में उनकी भिड़ंत रियो ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगी। सिंधु ने 2 साल पहले सिंगापुर में BWF खिताब जीता था और वे पिछले सप्ताह थाईलैंड ओपन में उप विजेता रही थी। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। विश्व के 10वें नंबर के खिलाड़ी प्रणॉय ने विश्व के 45वें नंबर के खिलाड़ी बेल्जियम के जूलियन करेगी के खिलाफ 21-9 18-21 21-9 से जीत हासिल की, जबकि लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने एक्सेलसन के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन 62 मिनट तक चले मुकाबले में वे 13-21 21-16 13-21 से पराजित हो गए। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
तो प्रेम, जैसा हम लोग सोच रहे थे, HS प्रणॉय और सिंधु दोनों ने ही उम्मीद के अनुसार ही शुरुआत की है पहले दौर के मैचेस अपने।
बिल्कुल, दोनों का अपना एक लंबा जो है अनुभव भी है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन में इंडिया की तो टॉप रैंकिंग प्लेयर है ही, बल्कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो रैंकिंग होल्डर है, जिनके पास ओलंपिक्स से लेके और ओलंपिक्स के भी महिला एकल बैडमिंटन में जो है अपना मेडल है
जी।
तो निश्चित रूप से जो एक अनुभव एक प्लेयर का होता है ओलंपिक्स जैसी बड़ी इवेंट का, वो काम आता है और आगे 2024 का पेरिस ओलंपिक जो है हमारे सामने बिल्कुल है ही, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्रदर्शन इस इवेंट में भी बहुत बेहतरीन रहेगा और अगर यहां वो बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो आगे आने वाली जितनी भी चैंपियनशिप्स है वहां पे उनके लिए एक बहुत अच्छा उनका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
जी बिल्कुल, और अभी मुझे लगता है थाईलैंड ओपन में उपविजेता रहने के बाद उनका आत्मविश्वास पहले से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं चल रहा था, खासकर इंजरी के बाद से।
हाँ देखिए, एक जो प्लेयर होता है उसके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और खासकर आजकल की अगर हम बात करें तो इंजरी जो है, इंजरी मैनेजमेंट एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो आजकल इतने ट्रेनिंग टूल्स की हम बात करें या डाइट की हम बात करें कि बहुत अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हैं, और भारत सरकार भी जो है इसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और हमारे प्लेयर्स को जो जिस तरीके की सुविधाएं चाहिए वो देती हैं। तो जब इंजरी किसी प्लेयर को होती है तो थोड़ा बहुत उसको वापस कम बैक करना, मतलब संभाव थोड़ा टाइम लेता है वो प्लेयर, लेकिन सिंधु के बारे में हम लोग जानते हैं उनका अनुभव यहां पर काम आएगा, और जिस तरीके से दूसरे दौर में यहां पर प्रवेश किया है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी उम्मीदें की जा सकती है।
बिल्कुल, वैसी उम्मीद हम एचएस प्रणॉय से भी कर रहे हैं, ओलंपिक पदक की भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन लक्ष्य सेन के साथ भी इंजरी के बाद से काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं।
ये कई बार हम लोग स्पोर्ट्स में कहते हैं कि जो है ना, एक कई बार प्लेयर का दिन होता है
जी।
तो ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि विश्व रैंकिंग में वरीयता है उनकी भी, लक्ष्य सेन की भी, और बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत सारे बड़े इवेंट्स में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो कई बार होता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी जो है किसी मैच में हार जाते हैं, लेकिन हमको एक बात सोचनी चाहिए कि बहुत पहले हमारे पास टीम इवेंट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, लेकिन ऐसे सिंगल इवेंट और इन सब में हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता था। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि अब कम से कम ऐसे गेम्स जिनमें सिंगल भी खेलते हैं,
और तो अच्छी
उसमें भी हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है जो खेल रहे हैं वो भी, और पीछे के लिए बेंच स्ट्रेंथ भी हमारे पास बहुत सॉलिड है।
बिल्कुल बिल्कुल, और लक्ष्य ने अच्छी टक्कर दी है विक्टर एक्सेलसन को, दूसरा सेट वो जीते भी, तीसरे सेट तक गया है गेम, वहां तक उन्होंने दिया, तो अच्छा एक वो किया था। हम श्रोताओं को बता दें कि विश्व के 10वें नंबर के खिलाड़ी प्रणॉय का अगला मुकाबला विश्व के 11वें नंबर के खिलाड़ी जापान के केंटा निशिमोटो से होगा, जबकि सिंधु अपनी चिर प्रतिद्वंदी कैरोलिना मरीन का सामना करेंगी। और अब हम चलते हैं शतरंज की ओर। भारत की आर वैशाली नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर महिला वर्ग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। वैशाली ने भारत की नंबर एक महिला खिलाड़ी हम्पी को पहली बार हराया। इस जीत से वैशाली लाइव रेटिंग में भारत की दूसरे नंबर की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आइए सुनते हैं प्राची की ये रिपोर्ट।
नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में आर वैशाली ने हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर अपनी पहली क्लासिकल जीत दर्ज की। चीन की वेंजुन और टिंगजी ने आर्मागेडोन बाजी में जीत दर्ज कराते हुए 1.5 अंक जुटाए। प्रतियोगिता में क्लासिकल टाइम कंट्रोल के तहत प्रत्येक जीत पर 3 अंक मिलते हैं। वैशाली के दूसरे दौर के बाद 4 अंक हो गए हैं, और उन्होंने पहले दौर में आर्मागेडोन बाजी में चीन की जू वेंजुन के खिलाफ हार की भरपाई भी कर ली। महिलाओं में वैशाली के बाद चीन की ले टिंगजी और वेंजुन 3 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। स्वीडन की पिया क्रेमलिंग और यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक 2 अंक के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं, जबकि 6 खिलाड़ियों की इस डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में हम्पी 1.5 अंक के साथ छठे स्थान पर है। पुरुष वर्ग में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नॉर्वे के कार्लसन 3 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। अमरीका के नाकामुरा चीन के लिरेन और फ्रांस के अलीरेजा 2.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि इनके बाद कारुआना और प्रज्ञानानंद का नंबर आता है जिनके 2-2 अंक हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानानंदा को दूसरे दौर में सामान्य टाइम कंट्रोल में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के खिलाफ ड्रॉ के बाद आर्मागेडोन टाई ब्रेकर बाजी में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सामान्य टाइम कंट्रोल में ड्रॉ के बाद सफेद मोहरे से खेलते हुए खिलाड़ी को 10 मिनट मिलते हैं, जबकि काले मोहरे से खेलने वाले को 7 मिनट, लेकिन सफेद मोहरों से खेलने वाले को जीत दर्ज करानी होती है, क्योंकि ड्रॉ होने पर काले मोहरे से खेलने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
तो प्रेम, भाई बहन की ये जोड़ी फिर से नॉर्वे शतरंज में अब अपना कौशल दिखा रही है। आर वैशाली और प्रज्ञानानंदा दोनों बड़ी उम्मीदें हैं शतरंज में भारत के लिए। एक और नाम जो जिसने अभी कैंडिडेट शतरंज में लोगों को चौंका दिया था वो डी गुकेश का था।
बिल्कुल,
तो अब एक जो खबर है वो यह है कि भारत ने डी गुकेश और मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाले विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले की मेजबानी की दावेदारी पेश की है। 17 वर्ष के गुकेश पिछले महीने कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर विश्व खिताब के सबसे युवा चैलेंजर बने थे और वो 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लिरेन का सामना करेंगे। प्रेम, अगर भारत को मेजबानी मिल जाती है तो जैसी खबरें हैं कि मुकाबला चेन्नई में होगा और अभी तक किसी ने दावेदारी नहीं की है, लेकिन खबरें हैं कि शायद सिंगापुर भी दावेदारी पेश कर सकता है।
देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के प्रयास भारत सरकार के हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का है, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमने 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी को भी अनाउंस किया हुआ है, तो अभी तो हमारे पास वो पावर भी है, उस तरीके का हमारे पास रिसोर्सेज भी है और उस तरीके का हमारे पास स्पोर्ट्स अरेना पूरा का पूरा, या मैं कहूं कि स्पोर्ट्स कल्चर, खेल संस्कृति पूरी की पूरी इस तरीके की विकसित हो गई है कि जिस भी इवेंट के लिए हम मेजबानी की बात करेंगे वो हमको मिल सकती है। और रही बात शतरंज की, चाहे हम डी गुकेश की बात करें, वैशाली की बात करें या फिर प्रज्ञानानंदा की बात करें, सबसे बेहतरीन बात यह है कि इतने यंग प्लेयर्स है ये। और शतरंज में एक टाइम था जब हम लोग विश्वनाथन आनंद के बाद हमको ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत बड़ा खालिस्तान सा हमारे पास है, लेकिन अभी ये जो स्ट्रेंथ है ये हमको सचमुच में गौरवान्वित करती है। निश्चित रूप से अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो हमारे ये जो यंग प्लेयर्स हैं इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी।
और बैंकॉक में चल रहे दूसरे मुक्केबाजी विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की अंकुशिता बोरो ने कजाकिस्तान की रिम्मा वोलोसोंको को 4-1 से हराकर 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं अरुंधति चौधरी ने 66 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता नरेंद्र बेरवाल 92 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तो अभी कितने क्वालिफायर की उम्मीदें हैं, प्रेम आपको क्या लग रहा है कि हमें मुक्केबाजी में, क्योंकि अभी तक हमारे पास 3 स्थान हैं, इसके अलावा अभी किसकी किसकी उम्मीदें लग रही हैं आपको?
बिल्कुल, उम्मीदें तो देखिए, हम हमारे जितने भी एक क्वालिफायर में एथलीट्स खेल रहे हैं
जी,
मोस्टली हम लोगों को लगता है कि उनसे उम्मीदें की जा सकती है, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते तब तक हमको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। मैं तो एक खिलाड़ी होने के नाते भी ये बात कह सकता हूं। तो अभी तो हमारे पास मौके हैं, ये क्वालिफायर चल रहा है, पहले से हमारी जो है महिला वर्ग में 3-4 जो है बड़े नाम जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और इनमें से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमको 3-4 बड़े नाम मिलेंगे।
जी बिल्कुल, उम्मीदें बरकरार हैं। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम यूरोप दौरे के अपने चौथे मैच में जर्मनी से संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-3 से हार गई। अंतिम मिनट तक चले मुकाबले में युगम्बर रावत और गुरजोत सिंह ने भारतीय टीम के लिए 1-1 गोल किया। और अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप की, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूयॉर्क में T20 विश्व कप के लिए सुबह के ट्रेनिंग सत्र के साथ अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। T20 विश्व कप में भारत के सभी शुरुआती मैच सुबह के समय होंगे और शायद इसीलिए सुबह के ट्रेनिंग सत्र को तवज्जो दी गई है। पहली बार इस आयोजन में अमरीका भी शामिल हुआ है, अमरीका और वेस्टइंडीज सह मेजबानी कर रहे हैं इसके। और हम श्रोताओं को बता दें कि भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि दूसरे मैच में 9 जून को न्यूयॉर्क में उसका सामना पाकिस्तान से होगा। तो क्या लगता है प्रेम की, क्या मौसम और क्लाइमेटिक कंडीशन?
देखिए, पहली बार ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी दो देश कर रहे हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज एक साथ में कर रहे हैं, और पहली बार यहां पे 20 टीमें लगभग हिस्सा ले रही है जिनको 5-5 के 4 वर्गों में बांटा गया है। हिन्दुस्तान की बात हम करें तो उनका जो ग्रुप है उसमें मेजर एक जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी हमेशा से रहा है पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, बाकी आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा जैसी टीमें हैं। तो हम लोग जिस तरीके से आईपीएल में भी हमारे खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित रूप से 2007 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप था इंडिया ने जीता है और 17 साल के बाद हम लोग चाहेंगे कि वो इतिहास दोहराया जाए।
जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इतिहास दोहराया जाए। तो श्रोताओं, समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने की। तो कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
धन्यवाद मुदिता।